नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी श्रोता मित्र परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की पुस्तक उसके दानियल नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा है कि परमेश्वर का दास दानियल, जो बंधुआई में बेबीलोन को ले जाया गया है और वहां पर खोजों की अधीनता में उसकी देखरेख में उसको रखा गया है ताकि वहां के लिए उसको तैयार किया जाए। तो मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार दानियल और उसके मित्र परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, दानियल के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन में से सीखें और उस पर मनन चिंतन करें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं, सीखते हैं, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार से प्रभु हम अपने जीवन को ढाल सकें। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, शैतान के छल प्रपंच से और इस दुनिया के हर एक प्रकार के बहकावे की बातों से आप हम सब की रक्षा करें ताकि हम एक सही जीवन जी सकें, आपको महिमा दे सकें। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार अवस्था में हैं, निराश और परेशान हैं, चिंता और दबाव में हैं। पिताजी, आप उन पर कृपा दृष्टि करें, उन्हें छुए, चंगाई दें ताकि वे तंदुरुस्त होकर आपके नाम को महिमा दे सकें। आज के इस अध्ययन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दानियल अपने मित्रों के साथ में बेबीलोन में है। जी हां, दानियल और उसके तीन साथियों को खोजा बनाकर अर्थात नपुंसक बनाकर विशेष भोजन पर रखा गया कि उनकी बुद्धि और उनका शरीर विकसित हो। अब उन्हें राजा के सम्मुख लाया गया। दानियल और उसके साथियों को देख राजा प्रसन्न हुआ। तो आइए हम पढ़ेंगे दानियल एक अध्याय उसके 15 पद। लिखा है, 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। दानियल का भोजन उनके हित में था। इससे हमें एक शिक्षा मिलना चाहिए। परमेश्वर चाहता था कि उसकी प्रजा इसराइल पड़ोसी जातियों से सर्वथा अलग हो, परंतु ऐसा नहीं था कि उसने उन्हें विशेष भोजन द्वारा अलग करना चाहा था। भोजन के नियम देने के पीछे परमेश्वर को उनके स्वास्थ्य का ध्यान था। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हम लय व्यवस्था में दिए गए भोजन के नियमों का पालन करें तो हम अपने पड़ोसियों से अधिक स्वस्थ होंगे, परंतु हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, इसलिए सब कुछ खा सकते हैं। मैंने अपने अनेक शारीरिक विकारों में यही देखा है कि सुअर का मांस हमारे लिए लाभकारी भोजन नहीं है। परमेश्वर द्वारा दिए गए इसराइल के भोजन नियम स्वास्थ्य के लिए लाभकारी थे, उसमें मात्र धार्मिक श्रद्धा की बात नहीं थी। हम आगे देखते हैं दानियल एक अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है, तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि की आशीष दी थी, उसी प्रकार परमेश्वर इन युवकों को एक विदेश दरबार में बुद्धि की भरपूरी की आशीष दे रहा था। आगे चल करके दानियल दो महान विश्व शक्तियों का प्रधानमंत्री होगा। दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया था। जी हाँ, दानियल उस युग में था जब परमेश्वर स्वप्न और दर्शनों द्वारा बात करता था। अब आप मुझे यह न कहना कि परमेश्वर ने आपसे स्वप्न में बात की, क्योंकि मैं आपकी बात काटकर कहूंगा कि आज परमेश्वर अपने लिखित वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है, ना कि स्वप्न के द्वारा। मेरे प्रियो, मनुष्य के लिए वचन का स्वप्न देखना उसके अध्ययन से अधिक आसान है। मेरे बाइबल स्कूल के विद्यार्थी परीक्षा से पूर्व की रात बड़े ही ध्यान एवं एकाग्रता से प्रार्थना करते थे। उन्होंने पढ़ाई तो की नहीं, परंतु प्रार्थना में अति सत्यनिष्ठ थे। एक विद्यार्थी ने मुझे बताया कि परीक्षा से पूर्व की रात वह बाइबल को तकिए के नीचे रखकर सोया था। मैंने पूछा, तुम क्या सोचते थे कि यहूदा और इसराइल के राजाओं के नाम रुई पार करके तुम्हारे सिर में घुस जाएंगे? पवित्र आत्मा एक आलसी के लिए न तो सहायता है और न ही सहारा है। आपको परमेश्वर का वचन पढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बात करता है और वह चाहता है कि हम उसके वचन को पढ़ें, न कि अपने तकिया के नीचे रखें, जैसा कि आज कई लोग अपने जीवन में ऐसा करते हैं। वे सोचते हैं कि तकिया के नीचे बाइबल रखने से उन्हें अच्छे स्वप्न आएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं दानियल के साथ परमेश्वर ऊंची आवाज में बात कर रहा है, क्योंकि वह बाइबल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिख रहा है। आलोचक कुछ भी कहें, इस पुस्तक का लेखक दानियल ही है। यह पुस्तक दानियल के 300 से 400 वर्ष बाद नहीं लिखी गई थी। दानियल की पुस्तक एक अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले आया। अब राजा उनकी परीक्षा लेकर के देखेगा कि उनका परीक्षण कैसा था। मेरे विचार में समाजवादी देश मनुष्य की मनोदशा परिवर्तन में मूर्ख रहे हैं। निसंदेह आप मनुष्य को विवश करते जाएं तो वह एक दिन समर्पण कर देगा, परंतु नबूकदनेस्सर की अपनी ही विधि थी। वह उन्हें अच्छा भोजन देता था, उन्हें परखता था और फिर उन्हें अच्छा पद प्रदान करता था। वह मित्र भाव प्रदर्शित करता था, यह उसकी मित्र बनाना और मनुष्यों को प्रभावित करना था। दानियल एक अध्याय के 19 पद में लिखा है, राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल हनन्याह मिशाएल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। इन चारों से सवाल जवाब करके नबूकदनेस्सर ने पाया कि वे प्रतिभाशाली युवक हैं, तो उसने उन्हें राज्य में ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। दानियल एक अध्याय के 20 पद में लिखा है, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। दानियल को सर्वोच्च पद प्रदान किया गया। दानियल एक अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, और दानियल कुश्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। मेरे मित्रों, इस पद और पद के साथ हमें दानियल का जीवन काल ज्ञात होता है। लगभग 17 वर्ष की आयु में वह बेबीलोन आया था और लगभग 90 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। वह स्वदेश नहीं लौटा क्योंकि वह शायद उनके प्रस्थान से पूर्व ही मर गया था। इसका विवरण हमारे पास में नहीं है, परंतु फिर भी हमें इस बात की जानकारी लेखकों के द्वारा दी जाती है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि अध्याय 1 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 2 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इसका विषय है एक मिस्र धातु की प्रतिमा का स्वप्न नबूकदनेस्सर ने देखा और दानियल ने अन्य जातियों के समय के 4 राज्यों का अर्थ प्रकट किया। जहां तक भविष्यवाणी का विचार है, हम परमेश्वर के वचन के एक सर्वोत्तम भाग में हैं। अध्याय 2 धातु की प्रतिमा, अध्याय 7 4 पशु, अध्याय 9 70 सप्ताह, पुराने नियम के इन अंशों के बिना आप भविष्यवाणी का ढांचा खड़ा नहीं कर सकते हैं। जैतून के पर्वत पर प्रभु यीशु ने शिष्यों के साथ जो बातें की थी वे दानियल की पुस्तक के आधार पर थी। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 3 पद में शिष्यों ने पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उन्हें चिन्ह समझाया। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 15 पद में, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। अतः यह अध्याय परमेश्वर के वचन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंश है। सर्वत्र एक ही प्रश्न है, संसार कहां जा रहा है, आगे क्या होगा। मेरे मित्रों, अन्य जातियों का समय समाप्त होने वाला है। उन्होंने संसार का संचालन अच्छा नहीं किया है। इसका आरंभ दानियल की पुस्तक में है और हम अंत समय के निकट भी आ रहे हैं। परंतु अन्य जातियों का समय पूरा होने से पूर्व कलीसिया संसार से उठा ली जाएगी और उसके बाद प्रभु यीशु पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आएगा। भविष्यवाणी का यह अध्याय सब भविष्यवाणियों को समझने का आधार है। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं कि धर्मशास्त्र के कुछ एक पद जानना और उनका अनुवाद करना बहुत खतरनाक हो सकता है। धार्मिक पंथों का विकास इसी प्रकार होता है। वे बस धर्मशास्त्र के कुछ एक पदों को जानते हैं। इन धार्मिक पंथों के संस्थापक मानव स्वभाव और इतिहास को जानते हैं। वे जानते हैं कि मनुष्य को प्राकृतिक मन की शांति के लिए कोई न कोई मनोधारणा चाहिए। मेरे प्रियो, मुझे किसी ने एक अत्यधिक सफल प्रभु के दास के बारे में बताया। वह शराब पीता था, गालियां बकता था और युवकों के साथ घूमता फिरता और वह सब काम करता था जो एक युवक करते हैं। उसने पूछा कि ऐसे प्रचारक के पास लोग क्यों आते हैं, मेरी कलीसिया में नहीं आते, जबकि मैं यथा संभव परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूं। मैंने उस युवा प्रचारक से कहा कि जब तक हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे हम अल्पसंख्यक ही रहेंगे। उसकी सेवा मनुष्य के प्राकृतिक मन को प्रसन्न कर रही थी। उसने बहुतों को पानी में डुबाकर बपतिस्मा दिया, परंतु प्रभु यीशु के उद्धार दिलाने वाले ज्ञान में उन्हें नहीं लाया और वे परमेश्वर को ठीक रीति से नहीं जान पाए। मेरे प्रियो, महान संत अगस्तीन से पूछा गया कि वह गलत शिक्षा में क्यों पड़ गए थे, तो उन्होंने कहा कि वह परिपूर्ण और पूर्ण तर्क सम्मत थी। आज के प्रचारक वचन के प्रचार में जो दार्शनिक विचारों का समायोजन करते हैं वह सबसे अधिक खतरनाक विधि है। वे परमेश्वर के वचन को आधार और अधिकार मानकर नहीं चलते हैं। वे पूर्व काल के किसी दार्शनिक जैसे प्लेटो आदि के विचार व्यक्त करते हैं। सेवा में प्रवेश करते समय मैं भी इसी विचार में था कि ऐसा ही प्रचार करूं, क्योंकि इससे मनुष्य आकर्षित होते हैं और आपको महाविद्वान भी कहते हैं और महाविद्वान प्रकट करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं दो ऐसे मनुष्यों के संपर्क में आया जिन्होंने मुझे बाइबल की शिक्षा देने के मार्ग पर लौटा दिया। परमेश्वर के वचन को पूरा का पूरा पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः यह भाग बड़े ही महत्व का है। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं कि नबूकदनेस्सर का स्वप्न बेबीलोन के ज्योतिषियों को आज्ञा देता है। दानियल 2 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। निश्चय ही नबूकदनेस्सर, जो इस समय ऊंचाइयों पर था और घमंड से भरा हुआ था, अपने साम्राज्य के विषय में सोच रहा होगा। सच तो यह है कि बेबीलोन संसार का सबसे पहला महान साम्राज्य था। नबूकदनेस्सर ने वह काम किया जो मिस्र नहीं कर पाया, क्योंकि मिस्र आत्मनिर्भर था। यदि किसी फिरौन ने बड़ी भूल की तो वह थी कि उसने नील नदी का त्याग किया। वे मिस्र में चारों ओर के रेगिस्तान से पूरी तरह सुरक्षित थे। यदि उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी तो केवल नील नदी के प्रवेश द्वार की। मिस्र के बाहर निकलकर विजय अभियान किए और संसार को प्रभावित किया, परंतु वे विश्व शक्ति कभी नहीं बन पाए। नबूकदनेस्सर एक छोटा सा कबीले का सरदार था। उसने कुछ कबीलों को संगठित किया और तदुपरांत अशुरों को जीता, उसके बाद सीरिया को जीता और आगे बढ़ता गया और मिस्र को अपने अधीन किया। यूनानी भी उसे रोक नहीं पाते, परंतु वह उस ओर नहीं बढ़ा। उसे आवश्यकता भी नहीं थी कि यूनान को जीते, क्योंकि वह उस युग के संसार पर प्रभुता कर रहा था। नबूकदनेस्सर ने जब इस बात पर विचार किया तो उसे यह बोध हुआ कि वह एक विश्व साम्राज्य का स्वामी है। उसने शेर की पूंछ पकड़ ली थी, छोड़े तो मरा, ना छोड़े तो मरा। ऐसे समय में परमेश्वर ने उससे बात की। उसके लिए सोना भी कठिन हो रहा था। वह अपने विशाल साम्राज्य के बारे में सोचकर परेशान था कि उसका भविष्य क्या होगा। क्या आप जानते हैं कि नबूकदनेस्सर के 25 वर्ष बाद आज हमारी चिंता का विषय भी वही है। प्रसंगवश इसका उत्तर इस अध्याय में है। दानियल 2 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोन्हे और कस्ती बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। नबूकदनेस्सर ने अपने सब ज्योतिषियों को बुलवाया। वे सब दानियल और उसके मित्रों के समान प्रशिक्षित किए गए थे। वे महाबुद्धिमान मनुष्य थे। यह सच है कि वे अन्य जाति धर्म के सिद्धांत और अंधविश्वास से परिचित थे। मेरे मित्रों, आज हम कितने दूर हो गए हैं। आज के कुछ PhD बाइबल को स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे विचार में वे भी अंधविश्वासी और अन्य जाति हैं। आप बेबीलोन के विद्वानों को कम ना समझें। वे आज के PhD से कम नहीं थे। वे बेबीलोन का मस्तिष्क थे। अतः राजा ने उनको बुलवाया। आगे हम पढ़ते हैं दानियल 2 अध्याय के 3 पद में लिखा है, तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। राजा ने कहा कि उसने एक विचित्र स्वप्न देखा है और उसके विचार में उसका अर्थ दूरस्थ परिणामों का था। देखिए, परमेश्वर तो उस पर स्पष्ट करता है कि वह उसे संदेश देना चाहता है, परंतु वह अंधकार में था। अतः केवल इतना ही जानता था कि वह स्वप्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आगे हम पढ़ते हैं दानियल 2 अध्याय के 4 पद में, तब कसदियों के राजा से आरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। मेरे विचार में यह कहना सबसे बड़ी मूर्खता है, परंतु राजा की चटुकारी का शायद यही तरीका था, क्योंकि उन राजाओं का जीवन लंबा नहीं था। उन्हें कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता था। हमें दानियल की पुस्तक में इस स्थान पर यह देखना अति महत्वपूर्ण है कि अब भाषा इब्रानी से अरामी भाषा हो जाती है। पद 4 में अरामी भाषा उस समय राजसी भाषा थी, वह संसार की भाषा थी। इसका अर्थ अत्यधिक गंभीर एवं महत्वपूर्ण है। परमेश्वर अपनी प्रजा ही से नहीं, संपूर्ण संसार से बात कर रहा है। परमेश्वर ने दाऊद का राजदंड अन्य जातियों को दे दिया है और इसराइल बंधुआई में है और तब तक रहेगा जब तक कि कीलों से छीदे हाथ उसे न उठाए। यह परमेश्वर की इच्छा है। मेरे प्रियो, यहां विषय है विश्वव्यापी राज्य का। यह विचार कि परमेश्वर का वचन एक स्थानीय देवी या देवता तक सीमित है और बाइबल का दृष्टिकोण बहुत सीमित है, सर्वथा गलत है। यदि हम अति सावधानी से बाइबल का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि परमेश्वर के मन में एक विश्वव्यापी राज्य का विचार है। भजन संहिता 89 उसके 27 पद में परमेश्वर दाऊद के साथ वाचा बांधता है कि वह प्रभु यीशु को संसार के सब राजाओं से महान बनाएगा। और पद 34 से 37 में वह कहता है कि वह न तो अपने वाचा तोड़ेगा और न ही उसे बदलेगा। दाऊद का वंशज अनंत होगा और उसका सिंहासन सूर्य की नाई प्रतापी होगा। वह सदा सर्वदा चांद की नाई होगा। यदि आकाश में सूर्य न हो और रात में चांद दिखाई न दे तो मैंने अपनी वाचा तोड़ दी या बदल दी। परंतु जब तक आप सूर्य और चांद को देखते हैं तो जान लेंगे कि मैं पृथ्वी पर अपना राजा बैठाऊंगा। यह स्थानीय नहीं, वैश्विक परिदृश्य है। यह प्रथम महान वैश्विक राजा की चर्चा है और भाषा भी सांसारिक है। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने तरीके से अपने लोगों तक अपने वचन को पहुंचाता है। यहां पर राजा नबूकदनेस्सर, जो एक महान साम्राज्य का राजा है, उससे भी परमेश्वर अपने तरीके से बातों को रखता है। और हम दानियल नबी के द्वारा से देखते हैं कि वह इसका अर्थ उसे बताएगा। मेरे प्रिय मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आप अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किए हैं। अगले अध्ययन में हम इसके स्वप्न और उसके अर्थ को देखेंगे, जहां परमेश्वर के दास दानियल ने इसके अर्थ को बताया। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है हिंदी hindi@twr.in, hindi@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
हे प्रभु यीशु, तुमको प्रणाम, गाते हैं हम वंदन गान।
हे प्रभु यीशु, तुमको प्रणाम, गाते हैं हम वंदन गान।
सुबह तिहारे सन्मुख आए, शीश
प्रभु।